अध्याय 49 यहोशू का अंतिम संदेश। ये अध्याय यहोशू 23 और 24 पर आधारित है। युद्ध के समाप्त होने पर यहोशू तिम्नत्सेर में अपने घर के शांतिपूर्ण एकांत स्थान में चला गया था। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इसराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, तब यहोशू ने सब इसराइलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाया। प्रजा को अपने अपने निज भाग में बसे हुए कुछ ही वर्ष बीते थे और वही बुराइयां उत्पन्न होने लगी थीं जिनके कारण इसराइल को दंडाज्ञा मिली थी। जैसे जैसे यहोशू को आयु संबंधी दुर्बलता महसूस होने लगी और उसे लगा कि उसका कार्यकाल समाप्त होने को था, वो अपनी प्रजा के लोगों के भविष्य को लेकर चिंता से भर गया। जब वे अपने वृद्ध मुखिया के चारों ओर इकट्ठे हुए तो उसने एक पिता से अधिक रुचि के साथ उन्हें संबोधित किया। तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों के लिए क्या क्या किया, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालांकि कनानियों को अधिकृत कर लिया गया था, लेकिन अभी भी इसराइल को प्रतिशुद्ध देश का काफी बड़ा भाग उनके अधिकार में था, और यहोशू ने अपने लोगों से आग्रह किया कि वे आराम से न बैठ जाएं और ना ही उन मूर्ति पूजक जातियों को पूरी तरह अनाधिकृत करने के परमेश्वर के आदेश को भूले। सामान्य रूप से प्रजा मूर्ति पूजकों को बाहर करने के कार्य को समाप्त करने में ढीले थे। गोत्र अपने अपने निज भागों में तितर बितर हो गए थे, सेना भंग हो गई थी और युद्ध दोबारा छेड़े जाना एक कठिन और संदेहजनक कार्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन यहोशू ने घोषणा की, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसको पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। यहोशू ने लोगों को ही साक्षी मान अनुरोध किया कि जब तक वे नियमों से सहमत थे परमेश्वर ने उनसे की हुई प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कहीं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। उसने घोषणा की कि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई भलाई की सब बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा। जब तुम उस वाचा का उल्लंघन करोगे तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। शैतान इस संभावित मत से बहुतों को बहकाता है कि लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि परमेश्वर के वचन में दी गई चेतावनियां उसके नैतिक शासन में एक विशेष उद्देश्य के लिए है, लेकिन वे यथाशब्द कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के अपने सभी कार्यों में सिद्धांतों को कायम रखा है और उदाहरण सहित ये समझाया है कि उसके परिणाम स्वरूप कष्ट और मृत्यु निश्चित है। पाप की अप्रतिबंधित क्षमा न कभी हुई है और न कभी होगी। इस प्रकार की क्षमा धार्मिकता के सिद्धांतों का परित्याग प्रकट करेगी, वे सिद्धांत जो परमेश्वर की सत्ता का आधार हैं। ये अपतित ग्रहों को आश्चर्यचकित कर देगी। परमेश्वर ने सच्चाई से पाप के परिणामों की ओर संकेत किया है, और यदि ये चेतावनियां सत्य नहीं थीं, तो उसकी प्रतिज्ञाओं के पूरे होने के बारे में हम कैसे निश्चित होते? वो तथाकथित उदारता जो न्याय को परे रख देती है, वो उदारता नहीं दुर्बलता है। परमेश्वर जीवनदाता है। प्रारंभ से ही उसके सारे नियम जीवन के लिए नियुक्त थे, लेकिन परमेश्वर द्वारा स्थापित क्रम को पाप ने भंग कर दिया और परिणाम था असामंजस्य। जब तक पाप विद्यमान रहेगा दुख और मृत्यु निश्चित है, केवल इसलिए कि उद्धारकर्ता ने हमारे लिए पाप के श्राप का वहन किया, मनुष्य पाप के परिणाम से छुटकारे की आशा कर सकता है। यहोशू की मृत्यु से पहले उसकी आज्ञा का पालन कर गोत्रों के प्रतिनिधि और प्रधान फिर से शेकम में एकत्रित हुए। पूरे देश में कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहां इतने सारे पवित्र संसर्ग थे जो उन्हें अब्राहम और याकूब के साथ बांधी वाचा का स्मरण कराते थे और कनान में उनके प्रवेश के समय ली गई उनकी शपथ की भी याद दिलाते थे। एबाल और गिरिज्जिम पर्वत उन शब्दों के मूक साक्षी थे जिन्हें दोहराने के लिए वे अपने मरते हुए अगवे की उपस्थिति में इकट्ठे हुए थे। चारों ओर प्रमाण थे उन कार्यों के जो परमेश्वर ने उनके लिए किए थे। किस तरह उसने उन्हें वो देश जिसके लिए उन्होंने श्रम नहीं किया, वे नगर जिनका निर्माण उन्होंने नहीं किया, दाख की बारियां जिनको उन्होंने नहीं रोपा दिए थे। यहोशू ने एक बार फिर परमेश्वर के आश्चर्यजनक कार्यों का वर्णन करते हुए इसराइल के इतिहास को दोहराया, जिससे कि सबको उसकी दया और उसके प्रेम का आभास हो और वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यहोशू के निर्देश द्वारा संदूक शीलो से लाया जा चुका था। ये एक विधिवत समारोह था और परमेश्वर की उपस्थिति का ये प्रतीक उन पर उस प्रभाव को गहरा कर सकता था जिसे वो करना चाहता था। परमेश्वर की भलाई को इसराइल पर प्रकट करने के पश्चात उसने यहोवा के नाम में उन्हें चयन करने को कहा कि वे किसकी उपासना करेंगे। मूर्तियों की पूजा अभी भी गुप्त रूप से किसी हद तक की जाती थी और यहोशू ने उन्हें निर्णय पर पहुंचाने का प्रयत्न किया जिससे वे इसराइल के इस पाप को निर्वासित कर दे। उसने उनसे कहा, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरा लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू चाहता था कि वे परमेश्वर की सेवा दबाव में आकर नहीं वरन स्वेच्छा से करें। परमेश्वर के लिए प्रेम धर्म का आधार है। प्रतिफल की उपेक्षा में या दंड के भय से उसकी सेवा में व्यस्त होने से कोई लाभ नहीं। निरी औपचारिक आराधना और पाखंड परमेश्वर के लिए उतना ही दुखदायी है जितना कि प्रत्यक्ष अधर्मी। वृद्ध अगवे ने लोगों से आग्रह किया कि जो भी उसने उनके सम्मुख प्रस्तुत किया था उससे संबंधित सब बातों पर सोच विचार कर निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या वे वास्तव में अपने चारों ओर के पतित मूर्ति पूजक जातियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। यदि उन्हें आशीष के सोते, शक्ति के स्रोत, यहोवा की सेवा करना बुरा लगता था तो वे उसी दिन चुनाव करें कि वे किसकी सेवा करेंगे, उन देवताओं की जिनकी सेवा उनके पुरखा करते थे, जिनमें से अब्राहम को बुलाया गया था, या एमोरियों के देवताओं की जिनके देश में वे रहते थे। ये अंतिम शब्द इसराइल के लिए कड़ी निंदा थे। एमोरियों के देवता अपने उपासकों की रक्षा नहीं कर पाए थे। उनके घृणास्पद और भ्रष्ट करने वाले पापों के कारण इस दुष्ट राज्य को नष्ट कर दिया गया था और उनका अधिकृत समृद्ध प्रदेश परमेश्वर के लोगों को दे दिया गया था। यह इसराइलियों की कैसी मूर्खता थी कि उन्होंने उन देवी देवताओं को चुना जिनके लिए एमोरियों को नष्ट कर दिया गया था। मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेगा, यहोशू ने कहा। जो पवित्र उत्साह अगवे के हृदय को प्रेरणा देता था उसी उत्साह का प्रजा में संचार हुआ। उसके निवेदन का उन्होंने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करने से परमेश्वर हमें दूर रखे। यहोशू ने कहा, तुम यहोवा की सेवा नहीं कर सकते क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा नहीं करेगा। स्थायी दोष निवृत्ति होने से पूर्व लोगों को परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की अपनी असमर्थता का आभास करवाना आवश्यक है। उन्होंने उसकी व्यवस्था को भंग किया था। वो उन्हें आज्ञा का उल्लंघन करने का दोषी ठहराती थी और वो बचने का कोई उपाय नहीं प्रदान करती थी। जब तक उन्हें अपने निजी सामर्थ्य और धार्मिकता में विश्वास था, उनके लिए क्षमादान प्राप्त करना असंभव था। वे परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते थे और उनका परमेश्वर की सेवा करने की शपथ लेना व्यर्थ था। उन्हें उद्धार के लिए अपने निजी प्रयत्नों पर निर्भर करना छोड़ना होगा और परमेश्वर द्वारा स्वीकृत होने के लिए पूर्णतया प्रतिशुद्ध उद्धारकर्ता की योग्यता में पूरी तरह विश्वास करना होगा। यहोशू ने प्रयत्न किया कि उसके श्रोता उसके शब्दों पर गौर करें और ऐसी शपथ लेने से पीछे रहें जिन्हें पूरी करने के लिए वे तैयार नहीं थे। उन्होंने गंभीरतापूर्वक अपने कथन को दोहराया, नहीं, हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। आप ही अपनी साक्षी होकर कि उन्होंने यहोवा को चुना था, उन्होंने एक बार फिर स्वामी भक्ति की शपथ खाई। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों के साथ वाचा बांधी और शेकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। इस विधिवत कार्यवाही के वृतांत को लिखकर उसने इसे व्यवसाय की पुस्तक के साथ संदूक में एक किनारे रख दिया और स्मारक के प्रतीक के रूप में एक पत्थर की शिला को खड़ा किया और कहा कि ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए ये तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इसराइल के लिए यहोशू का कार्य समाप्त हुआ। उसने संपूर्णता से प्रभु का अनुसरण किया था और परमेश्वर की पुस्तक में उसे यहोवा का दास कहकर लिखा गया है। प्रजा के अगुवे के रूप में उसके चरित्र का श्रेष्ठतम साक्ष्य है उन पीढ़ियों का इतिहास जिन्होंने उसके श्रम का आनंद लिया। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे, उनके भी जीवन भर इसराइली यहोवा ही की सेवा करते रहें।